الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بدن کے ڈفرنٹ پارٹس بنائے ہیں اور یہ جتنے بھی باڈی کے پارٹس ہیں یہ اپنے فنکشن میں، اپنے کام کرنے میں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. ایگزامپل کے طور پر ہماری آئیز سے ہم دیکھ سکتے ہیں، باڈی کے کسی اور پارٹ سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. ہمارے ایئر سے ہم سنتے ہیں، باڈی کا کوئی اور پارٹ سننے کا کام نہیں کرتا ہے. ہماری زبان سے ہم بولتے ہیں، بدن کا کوئی اور حصہ بولنے کا کام نہیں کرتا ہے. ہمارے دماغ سے ہم سوچتے ہیں، لیکن جو مائنڈ کام کرتا ہے یہ کام دوسرا کوئی باڈی کا پارٹ نہیں کرتا ہے. تو فنکشن کے اعتبار سے سارے باڈی کے پارٹس ڈیفرنٹ ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں باڈی بنائی ہے وہیں پر ہمارے سول کو، ہمارے روح کو بھی پیدا کیا ہے. اور یہ روح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ طاقت رکھی ہے کہ باڈی اور سول ان دونوں کے درمیان میں ایک جوڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہ روح کا کام یہ ہے کہ پوری باڈی کے پارٹس کے درمیان میں یہ انٹیگریشن کرتی ہے، کوآرڈینیشن کرتی ہے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ میں مل جاتے ہیں تو ایک کا اثر دوسرے پر، دوسرے کا اثر تیسرے پر، اور پوری باڈی کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جان بھی دی ہے، جسم بھی دیا ہے، باڈی بھی دی ہے، اور اللہ نے ہماری روح کو بھی پیدا کیا ہے. دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میں جوڑ موجود ہے. देखो मिसाल के तौर पर अगर किसी को हेडेक होने लगे तो हेडेक तो सर में हो रहा है, लेकिन ये रूह की वजह से, सोल की वजह से, पूरी बॉडी के तमाम पार्ट्स है वो सब मुतासिर हो जाते हैं। हेडेक हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स ये नहीं बोलते हैं कि भाई सर में दर्द होता है हमें क्या करना है, नहीं, ये रूह ने सबके दरमियान में कोऑर्डिनेशन पैदा कर दिया है। इस बिना पर सर में दर्द होता है और जब सीवियर पेन होने लगता है, माइग्रेन की तकलीफ होने लगती है, तो आई से टीयर्स निकलने लगते हैं, पूरी बॉडी के अंदर तकलीफ होने लगती है, इंसान की बॉडी बेचैन हो जाती है और ऑटोमेटिकली उसका दिमाग सोचने लगता है मुझे मेडिसिन लेना चाहिए, वो पैरासिटामोल या कोई और पेन किलर को लेकर इस्तेमाल कर लेती है, हाथ उसके आगे बढ़ते हैं और उस टेबलेट को, उस मेडिसिन को हाथ में ले लेते हैं, माउथ उसका खुल जाता है और मुंह अंदर वो उस मेडिसिन को स्वॉलो कर लेती है, तो गोया एक हेडेक हो रहा है, बॉडी के तमाम पार्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शन कर रहे हैं और इनमें ये सब काम करवा रही है वो रूह जो अल्लाह ने उसके अंदर रखी है। या एक शख्स है, किसी ने डंडा लिया और उसके सर पर मार रहा है, तो मार तो सर पर रहा है लेकिन डिफेंड करने के लिए हाथ फौरन रेडी हो जाते हैं और हाथ उस स्टिक को स्टॉप करने लगते हैं, पैर रेडी हो जाते हैं और बचने के लिए वो पैर उसको लेकर भागने लगते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बॉडी और सोल, ये दोनों की दोनों चीजें अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी पैदा फरमाई है कि जिसके बिना पर इन दोनों के दरमियान में जोड़ मौजूद है। हाँ, जब बॉडी के अंदर रूह नहीं होती है, जिस्म के अंदर से रूह निकल जाती है, फिर ये सारे बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फिर उनके दरमियान में कोई जोड़ नहीं रहता है, कोई इंटीग्रेशन नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर एक लाश पड़ी हुई है और उसके अंदर जान नहीं है, अब अगर कोई उस लाश का मुंह खोले, उसकी जबान को बाहर निकाले और सीजर से उसकी जबान काट दे, पूरी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना आंखों में आंसू आएंगे, ना हाथ हिलेंगे, ना पैर मूवमेंट करेगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि रूह नहीं है, बॉडी में जान नहीं है, तो बॉडी के आजा सब एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने बॉडी और रूह के दरमियान में एक जोड़ बना कर रखा है और रूह अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी पैदा की है कि जो इतनी लतीफ है, इतनी लतीफ है कि हमें नजर ही नहीं आती है। इसी बिना पर जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने सवाल किया, वयसअलूनका अनिर रूह, ए मेरे महबूब, लोग तुम्हें सोल के बारे में, आत्मा के बारे में, रूह के बारे में सवाल करेंगे, कुलिर रूहु मिन अम्री रब्बी, ए मेरे महबूब, कह देना कि रूह का समझना ये मुश्किल है, ये अल्लाह तबारक व ताला के मामले में से है, ये रूह इतनी लतीफ है कि न उसको हम देख सकते हैं। यस, हमें मालूम है कि बॉडी के अंदर जान मौजूद है, लेकिन वो जान जब निकलती है हमें दिखाई नहीं देती है और कभी भी नहीं दिख सकती है। एक आदमी जिसकी मौत होने वाली है, इसको रूम में रख दिया जाए और उसको उसके चारों तरफ ग्लास लगा दिया जाए और ऐसे रूम के अंदर रख दिया जाए कि कोई चीज बाहर निकल नहीं सकती, कोई चीज अंदर जा नहीं सकती, उसे एयर टाइट कर दिया जाए, लेकिन जब रूह को निकलना होगा, वो रूह उसके जिस्म से निकल कर चली जाएगी, हमें दिखाई भी नहीं देगी। तो अल्लाह के तबारक व ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ये रूह का मामला अल्लाह तबारक व ताला के पास है, वो जब निकालना चाहे निकाल ले, कोई उसे देख नहीं सकता है, बल्कि अल्लाह ताला ने रूह के मामले को ऐसा रखा है कि अगर एक आदमी है, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया और उसकी बिना पर उसका हार्ट बंद हो गया है, फौरन उसे लिटा दिया गया, उसे CPR करने लगे ताकि उसकी सांस वापस आ जाए, उसकी हार्ट बीटिंग शुरू हो जाए, वो आदमी जो उसको सीपीआर कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसकी रूह वापस आ जाए, अल्लाह चाहे तो इसके इस अमल की वजह से उसकी सांस चलने लगती है और जो आदमी कर रहा है अल्लाह उसी को, उसी की रूह को कब्ज कर लेता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम किसी की जान बचाने जाए, हमारी कोशिश की बना पर उसकी सांसें रुक गई है, वो शुरू हो जाए और जो करने वाला है अल्लाह उसी की रूह को कब्जा कर ले, तो ये अल्लाह तबारक व ताला का मामला है कि रूह अल्लाह ने अपने अंदर रखा, अपने इख्तियार में रखा है। तो अल्लाह ने जान भी दी है, बॉडी भी दी है, सोल और रूह भी हमें नसीब की है, और शरीयत हमें ये कहती है इन दोनों का प्रोटेक्शन करना ये ईमान वाले के लिए जरूरी और नेसेसरी है। बॉडी का भी प्रोटेक्शन करना है और अपने जान की भी हिफाजत करनी है और अपनी रूह की भी हिफाजत करनी है। आज मैं इसी बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो ये बॉडी जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दी है ये अल्लाह की एक अमानत है, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया वला तुल्कु बि अयदीकुम इला तहलुका कि अपने आप को हलाकत में मत डालो, अपनी बॉडी का ख्याल करो। अपनी बॉडी ये बहुत कीमती जिस्म है, ये जान अल्लाह की दी हुई है, इसका ख्याल करना हमारे जिम्मे जरूरी है। इसी बिना पर मसला है कि अगर किसी ईमान वाले को किसी गैर ने पकड़ लिया, जालिम ने पकड़ लिया, गन पॉइंट पर रख दिया और उसको ये कहा कि कलमा छोड़ दे, कुफ्र के कलमे बोल, अल्लाह का इनकार कर, तो शरीयत ने परमिशन दी है कि अपनी जान बचाने के लिए कुफ्रिया कलमे भी तुम बान से निकाल सकते हो। यस, रुखसत है, इजाजत दी गई है कि तुम्हें रुखसत है, अपनी जान को बचा लो, चाहे तुम्हें कुफ्र के कलमे कहना पड़े, चाहे तुम्हें अल्लाह के खिलाफ जबान से कहना पड़े, दिल में ईमान रखना, लेकिन जान बचाने के लिए तुम्हारी जबान पर तुम ऐसे जुमलों को भी ला सकते हो, ये शरीयत ने उसके लिए रुखसत रखी है। शरीयत का मसला है अगर एक आदमी भूखा है, खाना उसके पास नहीं है, प्यासा है, पानी उसके पास नहीं है और इतनी खराब हालत है कि जान निकल जाएगी, शरीयत ने रूल बयान किया कि अगर तुम्हारी जान जा रही है और अगर हराम गोश्त भी तुम्हारे सामने आ जाए, हराम खा लेना, लेकिन जान का बचाना कंपलसरी है। मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे को खा लेना, लेकिन जान का बचाना कंपलसरी है। प्यास लगी हुई है और ऐसी हालत है कि पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा, और वाइन पड़ा हुआ है, वाइन पीने की परमिशन है, लेकिन जान का बचाना जरूरी है, ये शरीयत का कानून है। शरीयत का हम ये मसला सुनते हैं कि रमजान का महीना है, हम सब रोजा रखना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई बहन बीमार है, हमारा कोई भाई बीमार है, और ऐसा बीमार है कि डॉक्टर ने कह दिया, हादिक तबीब ने कह दिया, और खुद उसका ये एक्सपीरियंस है कि अगर मैं रोजा रखूंगी मेरी बीमारी और बढ़ जाएगी, मुझे और नुकसान होगा, हो सकता है कि मैंने टाइम पर खाना नहीं खाया, मेरी बीमारी की वजह से मैं कोमे में चली जाऊंगी। शरीयत ये कहती है तुझे रोजा रखने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं रख, बड़े रोजे हैं, कई कई आवर्स के रोजे हैं, जब छोटे छोटे रोजे के अय्याम आ जाए उन दिनों में उसकी कजा कर लेना, शरीयत ने परमिशन दी है, जान की हिफाजत जरूरी है। और अगर ऐसी बीमारी है अभी भी नहीं रख सकती है और कभी भी नहीं रख सकती है, जान का खतरा है, तो शरीयत ने कहा रोजे मत रखो, फिदिया दे देना पर रोजा 2 pounds 50 pence, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करना जरूरी है। ये शरीयत के कानून है जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बतलाए हैं। मैं बतलाना चाहता हूं हमारी ये बॉडी, हमारी ये जान, ये कितनी नेसेसरी है, उसकी हिफाजत करना और उसका प्रोटेक्शन करना। हमें हुक्म दिया गया कि ठंडी का मौसम है, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और तुम्हें पानी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है, तुम बीमार हो और डर है कि अगर ठंडा ठंडा पानी ठंडे ठंडे मौसम में इस्तेमाल करोगे तो बीमार हो जाओगे। शरीयत ने कहा अगर वाकई लेकिन तुम पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तैमुम कर लेना, मिट्टी का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जान की हिफाजत करना जरूरी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वाकया है। एक सहाबी थे, उन पर गुसल फर्ज हो गया। अब बहुत ही ज्यादा सर्दी का मौसम था और पानी जो था बिल्कुल आइसी कोल्ड वाटर था, वेदर भी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अब गुसल इन पर फर्ज है। इन्होंने दूसरे साहबा से मशवरा किया कि मेरे ऊपर गुसल है, मैं क्या करूं, बहुत सर्दी है, बहुत ठंडी है और पानी तो बिल्कुल फ्रीजिंग है, मैं कैसे गुसल करूं। साहबा किराम रिदवानुल्लाही अली मजमाइन ने कहा कि गुसल तो करना पड़ेगा, फर्ज है तुम्हारे ऊपर, गुसल तो तुम्हें करना पड़ेगा, इसके अलावा तो चॉइस नहीं है। साहबा ने अपना मशवरा दिया, वो साहबी गए, उन्होंने जाकर गुसल किया और गुसल करने पर इतना ठंडा पानी इस्तेमाल किया, अल्लाह की मर्जी ऐसे बीमार हुए कि उसी की वजह से उनकी मौत हो गई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, अरे तुमने कैसा मशवरा दे दिया, बेचारे को ठंडा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया, देखो उनकी जान चली गई। अरे मेरी शरीयत में तो परमिशन है कि अगर जान को तकलीफ पहुंचती है तो तैमुम करने की इजाजत मौजूद है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अपनी जान की और अपने बदन की हिफाजत किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा उहद का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो दो जीरा पहनी थी। जीरा कहते वो आयरन जैकेट को, सेफ्टी के लिए पहना जाता है वॉर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो पहने थे, एक के ऊपर दूसरा। क्यों? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह डरपोक थे? अरे आप तो सबसे बहादुर थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बतलाया कि जान की हिफाजत जरूरी है और सहाबा को भी तालीम दी और आने वाली उम्मत को तालीम दी कि देखो मैं अल्लाह का नबी हूं फिर भी मैं असबाब इख्तियार करता हूं, मैंने दो दो जीरा पहनी है, अपनी जान की हिफाजत की है, इसलिए कि इस्लाम में जान की हिफाजत करना ये ईमान वाले के लिए जरूरी है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। इसलिए मेरी माए बहने, आज मैं यही प्रूफ करना चाहता हूं कि जान की हिफाजत, रूह की हिफाजत, ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। और इसी बिना पर अगर हम शरीयत के कवानीन को देखेंगे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, छोटी छोटी सुन्नतें हैं, इन सुन्नतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन एंड अगेन इस बात को समझाया, अपनी जान की और बॉडी की हिफाजत किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को जब तुम सो रहे हो बर्तन खुला मत रखो, खाना है बर्तन में बर्तन को खुला मत रखो, पानी है ग्लास में ग्लास को खुला मत रखो। क्यों? इसलिए कि यह सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसलिए कि तुम तो रात को सोए हो, पता नहीं क्या चीज खाने में गिर जाए, पता नहीं क्या चीज पानी में गिर जाए, सुबह तुम्हें पता नहीं है, तुमने खा लिया, तुमने पी लिया, तुम्हारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खा रहे हो पहले हाथ को धो लिया करो। हम कहते हैं अरे मेरे हैंड्स तो बिल्कुल वो साफ, वेरी क्लीन, बहुत क्लीन नजर आते हैं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं ये मेरी सुन्नत है, खाने से पहले हाथ धो लो, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम है ऐसे जर्म्स तुम्हारे हाथ में होंगे जो तुम्हें नजर भी नहीं आते हैं, जो माइक्रोस्कोप से शायद नजर आए, लेकिन तुम हाथ धो लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे हाथों को साफ कर देगा। तो हाथ धोकर खाना खाओ। और ये भी फरमाया गया कि खाना खाने के पहले हाथ धोया उसके बाद हाथ को पोछो मत, अक्सर लोग गलती करते हैं, हाथ धोकर पोछ लेते और फिर खाने बैठते हैं। सुन्नत यह है कि हाथ धोया उसी हाथ से खाना खा लो, इसलिए कि हमने टॉवल का इस्तेमाल किया, टिश्यू का इस्तेमाल किया, नैपकिन का इस्तेमाल किया, उस पर भी तो जर्म्स वगैरह हो सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने से पहले हाथ धो लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खाने के बाद भी हाथ धो लिया करो। इसमें भी हमसे गफलत हो जाती है, दावत में गए, खाना खा लिया, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर लिया, हम हाथ नहीं धोते हैं। मैं हदीस सुनाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने खाना खा लिया, हाथ को पानी से नहीं धोया, हो सकता है तुम्हारा हाथ स्टिकी स्टिकी हो, उसके ऊपर चिकनाहट हो, तुम सो गए, कोई इंसेक्ट आ गया और किसी इंसेक्ट ने तुम्हें काट लिया, तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम खुद होंगे कि तुमने बेपरवाही इख्तियार की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन छोटी छोटी सुन्नतों में हमें यह सिखलाया कि अपनी जान की कैसी हिफाजत की जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तुम पानी पी रहे हो तो ब्रीद अंदर मत करो, ग्लास के अंदर सांस मत लो, इसलिए कि न जाने तुम्हारे मुंह में कितने बैक्टीरिया होंगे जो उस ग्लास के अंदर चले जाएंगे। अब वापस तुम वही पानी को पियो या दूसरा कोई आदमी इस पानी को पिएगा, नुकसान होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन सांस में पानी पियो, और सांस लेना है तो बाहर लो, ग्लास के अंदर न लो, ताकि तुम्हें भी नुकसान न हो, किसी और पीने वाले को भी नुकसान न हो। ये अल्लाह के नबी की तालीम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यौन कर रहे हो, जमाई ले रहे हो, अपने मुंह पर हाथ रखा करो। इस तरीके से मुंह खोल कर जमाई लेना, पता नहीं कोई इंसेक्ट, कोई फ्लाई, कोई मॉस्किटो घूम रहा हो, वो तो जगह देखकर सीधा अंदर चला जाएगा, फिर तुम्हें ही तकलीफ होगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी समझाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात के वक्त में फायर को अपने घर में ऑन मत रखो, आग को मत जला कर रखो, इसलिए कि तुम सोए हुए हो, आग का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी सी आग भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आग बुझा दिया करो, उसके बाद में रातों को सोया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अगर तुम ऐसी जगह है कि जहां पर लोगों का आना जाना होता है, वहां पर कचरा मत डालो, रास्ते पर कचरा मत डालो, रास्ते पर तुम लिटर फेंकोगे, कचरा फेंकोगे, लोग जा रहे, लोगों को तकलीफ होगी, और हर एक की जान की हिफाजत होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ट्री है कि जहां पर शेड है उसके नीचे भी कचरा मत डालो, लोग वहां पर आकर बैठते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुएं के पास, दरिया के पास, वहां पर भी कचरा मत डालो, लोग वहां पर कपड़े धोने आते हैं, लोग पानी लेने के लिए आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये छोटी छोटी बातें बतलाई। आज हम कहते हैं हम हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स पर अमल कर रहे हैं, जी हां, लेकिन ये साइंस उस वक्त मौजूद नहीं थी। उस वक्त हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान की हिफाजत के, जिस्म की हिफाजत के ऐसे मसले बयान किए। मसला है अगर तुमसे कोई नाइफ मांगता है, कोई सीजर्स मांगता है, तो ऐसे उसके हाथ में नाइफ और सीजर्स दो कि शार्प एंड तुम्हारी तरफ हो, शार्प एज जो है वो सामने वाले की तरफ ना हो, हम शार्प एज को अपनी तरफ पकड़े और हैंडल वाली साइड सामने वाले को दे, ताकि सामने वाले के हाथ में लग न जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का नतीजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते में पत्थर मत फेंका करो, पेबल्स मत उड़ाया करो, इसलिए कि पता नहीं किसी को लग जाए। वो एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रदी अल्लाह तालान हो, एक मर्तबा उनका नेफ्यू उनके बाजू में बैठा हुआ था और नेफ्यू ये कर रहा है, पेबल उठा रहा है, पत्थर उठा रहा है और फेंक रहा है। इन्होंने कहा मत कर, वो उठाकर फेंक रहा है। اس صحابی نے فرمایا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لا تصید سیدن ولا تنکی وعدوبن, تم نہ اس سے شکار کر سکتے ہو نہ کسی دشمن کو مار سکتے ہو, تم کسی کا دانت توڑ دو گے, کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے, اس طرح پتھر مت پھینکا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نیفیو نہیں مانا, وہ یہی کرتا رہا. ان کو اتنا غصہ آیا کہ میں نبی کا فرمان بیان کرتا ہوں تو عمل نہیں کرتا ہے. انہوں نے زندگی بھر اس کے ساتھ میں بات نہیں کی ہے. کہنے کا مقصد یہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیفٹی رولز بیان کیے ہیں. ایک آدمی بائک چلاتا ہے, ہیلمیٹ پہن لے, یہ اس کی سیفٹی ہے. ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کار جو سیٹ بیلٹ ہے اس کو پہن لیا کرے, اس لیے کہ اس میں ہماری سیفٹی ہے. تو قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, یہ جان بہت قیمتی ہے, اس جان کی حفاظت کیا کرو. اور ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی جان کے ساتھ میں کھلواڑ کرے, اپنی جان کی ہم پرواہ نہ کرے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جان تمہاری نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے اسلام میں سوسائیڈ کرنا منع ہے, سوسائیڈ کرنا منع ہے, خودکشی حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے, یہ باڈی جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی امانت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, یہ تیری جان کا تیرے اوپر حق موجود ہے, اس بنا پر اپنی جان کی حفاظت کیا کرو. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ہم کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ تو سیفٹی کے رولز ہیں, ہم تھوڑی ڈرپوک ہے, وہ تو جو ڈرپوک ہوتا ہے وہ سیفٹی کے رولز کو فالو کرتا ہے. نہیں میری مائیں بہنیں, یہ شریعت کا وہ قانون ہے جو 1400 years پہلے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے. تو ہماری جان اور جسم کی حفاظت ضروری ہے, اینڈ ان دا سیم وے اپنی روح کی حفاظت بھی ضروری ہے. اپنی روح کی بھی حفاظت کرے. اور روح کا پروٹیکشن کیسے ہوگا؟ روح کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے, ہم اللہ کی مان کر چلے, نیک اعمال کرے, اللہ کو راضی کرے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر ہم عمل کرے, اللہ کو کبھی ناراض نہ کرے. اگر اللہ ہم سے راضی ہوگا وہ ہمارے روح کی حفاظت کرے گا. اور کیسے حفاظت کرے گا؟ اس کو خود اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مان کر چلو گے, اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرو گے تو اللہ کہیں گے یہ وہ روح ہے, یہ وہ روح ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اللہ اعلان کریں گے جا جا تیرے لیے میں نے جنت کے دروازے کھول دیے, تو ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے ہے یہ جو مجھے بہت پسند ہے. تو اس بنا پر اپنی روح کی حفاظت یہ ہے, ہمیں اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی روح کی حفاظت نہیں کی, یعنی اللہ کو ناراض کی, اللہ کی باتوں کو نہیں مانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ٹھکرا دیا, اللہ ناراض ہو جائے گا, وہ ہمیں سزا دے گا, وہ پنش کرے گا. دیکھو ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے, الحمدللہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اور 5 وقت کی نماز تو ماشاءاللہ ہماری سب بہنیں پڑھ رہی ہیں, ہماری سب بچیاں پڑھ رہی ہیں. لیکن 5 وقت کی نماز کے علاوہ رمضان کے مہینے میں ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. کتنے ہیں جو اشراق اور چاشت کی نماز کو بھی پڑھ رہے ہیں. ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے. ہمارے گھر میں اتنا بیوٹیفل ماحول ہے, اتنا روحانی ایٹموسفیئر ہے کہ پورے گھر میں کوئی ادھر قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے, ذکر اللہ ہو رہا ہے, دعائیں ہو رہی ہے, توبہ کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. کتنا اچھا ہم نے ماحول بنا کر رکھا ہے. آج باہر جگہ دیکھو تو ماشاءاللہ مسلمان عورتیں چل رہی ہے, بدن پر اسلامی لباس موجود ہے, شرعی لباس میں ہے, سکاف ان کے سروں پر ہے, چہرہ ڈھکا ہوا ہے, بال ڈھکے ہوئے ہیں, اور کتنی اللہ کی فرما برداری نظر آتی ہے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. لیکن پتا نہیں جہاں عید کا دن آتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے. یہ نمازیں چھوٹنے لگتی ہے, اللہ کی عبادتوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں. اللہ معاف کرے, عید کے دن ایسے ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہے کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر اتر رہا ہے. بال بھی کھل گئے, طریقے زندگی کے بدل گئے, ایسا لگتا ہے جیسے مسلمانی ختم ہو گئی ہے, اسلام کو تھوڑی دن کے لیے بریک دے دیا گیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر ہمارا یہ معاملہ ہے ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے اگر اپنی روح کی ہمیں حفاظت کرنا ہے ہمیں اپنے پروردگار کے حکم پر چلنا ہے. اپنے گھر میں جو اتنا اچھا ماحول بنا ہوا ہے اس کا ہمیں خیال کرنا ہے اور زندگی بھر اس کا خیال کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے تو ہمارے پاس آیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ زندگیوں میں اب تقویٰ آ جائے, اللہ کی عبادت آ جائے, اور اس طریقے سے ہم پیار محبت سے اللہ کو بھی راضی کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی کہ اپنے گھر والوں کا خیال کرو, رشتہ داروں کا خیال کرو, اپنی فیملی کی قیمت کو سمجھو, یہ بہت ضروری چیز ہے. آج اللہ معاف کرے, ایک گھر ہے, ایک ہی روف میں سب ساتھ میں رہتے ہیں. دیکھو شام کے وقت, رات کے وقت اس گھر کے اندر ایک ہی روم ہے, صوفہ پر باپ بیٹھا ہوا ہے, بازو میں ماں بیٹھی ہوئی ہے, سامنے بیٹا بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, ایک ہی گھر میں چاروں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن گھر میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں. چاروں کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہے اور چاروں اپنے موبائل میں انگروسٹ ہے, اور اس طریقے سے موبائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے گروپ کے ساتھ بات کر رہا ہے, وہ ادھر اپنے گروپ میں لگا ہوا ہے, ایک گھر میں رہتے ہیں. آج سوشل میڈیا نے ہمارے دلوں سے آپس کی محبتیں ختم کر ڈالی. آج ہمارے اندر گھروں کے اندر وہ محبت باقی نہیں رہی ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہیں, اس کے باوجود والدین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ دین کی باتیں یا دنیا ہی کی باتیں شیئر کرے. باپ اپنے کام میں, ماں اپنے کام میں, ادھر بچوں کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن نہ ماں باپ کی سننے کو تیار ہے, وہ اپنی دنیا میں مست ہے. یہ آج ہمارے گھر کا ماحول بن چکا ہے. آج باپ اگر اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرتا ہے, بیٹے اپنے آپ کو رائٹ پروف کرنے کے لیے 10 reasons پیش کرتا ہے. اگر ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ جو تو کر رہی ہے وہ رونگ ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. She thinks she is always right. اس کو یہ ہے کہ میں ہی ہمیشہ رائٹ ہوں. یہ آج گھروں کا ماحول بن چکا ہے. وہ محبتیں جو کسی زمانے میں بھائی بہنوں میں ہوا کرتی, بہن بہن میں بھائی بھائی میں ہوا کرتی, آج یہ معاملہ نہیں رہا ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر دوریاں ہو گئی ہے. یس ہم ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن دلوں کے اندر وہ محبت نہیں ہے, وہ جوڑ نہیں ہے, وہ آپس کے اندر پیار محبت نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنی بڑی بڑی ہماری ناراضگیاں ہو جاتی ہے. ہم لوگوں سے رشتے توڑ دیتے ہیں, بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ فلاں مجلس میں فلاں بہن نے سب کے سامنے میری یہ برائی کی ہے, پھر دیکھو زندگی بھر اس کے ساتھ بات چیت نہیں. وہ ریپینٹ بھی کرتی ہے, وہ آ کر معافی بھی مانگتی ہے, وہ کہتی ہے میں بہک گئی تھی, مجھ سے مسٹیک ہو گئی, لیکن نہیں, ہماری ناراضگی ایسی ہے ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنوں کو نہیں معاف کرتے, اپنے بلڈ ریلیشن کو آج ہم معاف نہیں کر رہے ہیں. یہ آج ہمارا معاملہ ہو چکا ہے. اور ادھر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے, بڑے سے بڑا دشمن ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا جو آپ کے خون کے پیاسے تھے, آپ کو مارنے کی پلاننگ کرتے تھے, لیکن جب وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا بڑا تھا آپ نے ایسوں کو بھی معاف کر دیا. صفان ابن امیہ مکہ مکرمہ میں آرمز کا ڈیلر تھا, ویپنز کی اس کی بہت بڑی شاپ تھی اور ہزاروں کی تعداد میں سوارڈز اور اسی طریقے سے سپیئرز اور بوز اینڈ ایروز وغیرہ اس کی شاپ میں ہوا کرتے تھے, لوگ اس سے خریدتے بھی تھے. اور اس زمانے میں تو یہ تھا کہ دو قبیلے کی لڑائی ہوتی تھی تو لوگ کرائے پر بھی لیتے تھے, رینٹ پر بھی لے کر جاتے تھے. خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ حنین کے موقع پر جب ضرورت پڑی ہے آپ نے صفان ابن امیہ سے تلوار اور نیزے لیے تھے, خود کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی, اور ادھار پر لیے تھے. تو یہ بہت بڑا آرمز کا ڈیلر تھا اور یہ ایمان نہیں لایا تھا. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اس کے دل میں بہت نفرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس کے دل میں چونکہ نفرت تھی اس نے ایک شخص کو بلایا, عمیر بن وہب کو. اور عمیر بن وہب کو یہ کہا, یہ بیچارہ ایک غریب آدمی تھا, اس کو کہا کہ دیکھ عمیر, اگر تو مکہ سے مدینہ جائے میں نے یہ سورڈ بنائی ہے اور یہ سورڈ کو میں نے کئی دنوں تک پوائزن میں ڈبو کر رکھا ہے, تو بالکل پوائزنس سورڈ ہے, کسی کو ذرا سا مارو گے اس کی باڈی میں پوائزن چڑھ جائے گا, وہ وہیں ختم ہو جائے گا. میں تجھے یہ سورڈ دیتا ہوں, تو مدینہ جا اور جا کر محمد کو قتل کر دے, نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو انہیں قتل کر دیتا ہے میں رسپانسبلٹی دیتا ہوں کہ مرتے دم تک تیرے پورے گھر کا خرچہ میں چلاؤں گا, تیری اولاد کا خرچہ میں دوں گا, سارا ایکسپنس تیرے گھر میں دوں گا. تجھے میرا ایک کام کرنا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے. اب یہ عمیر بن وہب تیار ہو گیا, غریب آدمی تھا, پیسے کی لالچ ملی, یہ لے کر گیا اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گیا. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے اور حضور کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن جو آدمی گلٹی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے چہرے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ سم تھنگ از رانگ. تو اس کی حالت یہی تھی کہ چونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ کب میں ملیں گے, کب میں اٹیک کروں گا, کیسے ماروں گا, ایک صحابی نے دیکھ لیا کہ اس آدمی کا فیس کچھ عجیب معلوم ہو رہا ہے, یہ ڈرا ڈرا معلوم ہوتا ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہا ہے. اس صحابی نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر عمیر بن وہب کو باندھ کر لے کر گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی سٹرینجر مدینے میں آیا ہوا ہے اور یہ ڈاؤٹفل لگتا ہے, اس کی جو حرکت ہے وہ برابر نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سچ بات بتا دو تو معاملہ بہت ایزیلی سالو ہو جائے گا, اور اگر تم جھوٹی باتیں کرتے ہو تو پھر ہمیں بھی اس کے طریقے آتے ہیں. اب وہ عمیر تو اتنا گھبرا گیا تھا, اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مارنے آیا تھا, میرا کوئی فالٹ نہیں ہے, مجھے پیسے کی لالچ دی گئی تھی, صفوان ابن امیہ نے مجھے کہا تھا کہ میں تیرے گھر کا خیال رکھوں گا, یہ میں تلوار لایا ہوں, پوائزنس سورڈ ہے اور اس کے ذریعے آپ کو مارنے والا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم مجھے مارنے آئے تھے لیکن تم نے سچی بات کہہ دی, کنفیشن کر لیا, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا, تم واپس مکہ چلے جاؤ. عمیر بن وہب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا, وہ واپس چلے گئے. اس کے بعد فتح مکہ ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو کونکر کیا. اس وقت جب فتح مکہ ہوا ہے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ عمیر بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تو میں نے ایمان نہیں قبول کیا تھا, آج میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں, کلمہ پڑا, مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد میں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جو صفان بن امیہ ہے نا, وہ تو بہت گھبرا گیا ہے, कि उसको पता है कि अब आप उसको नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो तो अब मक्का छोड़कर यमन भाग रहा है और यमन की प्लानिंग कर चुका है। लेकिन ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो करीम और माफ करने वाले हो, आप सफ़वान को भी माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए, एक दुश्मन जिसने आपको मारने की प्लानिंग की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर जाओ सफ़वान को कह दो मैंने उसे भी माफ कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिलीव नहीं करेगा, उसे यकीन ही नहीं आएगा कि आपने माफ कर दिया, आप मुझे कोई निशानी दीजिए ताकि मैं उसे बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए, आपने उसी वक्त अपना अमामा निकाला, अपना टर्बन निकाला और हजरत उमर को देखकर कहा, ये मेरी निशानी है, मेरा अमामा लेकर जाओ और बता देना सफ़वान को मैंने उसे माफ कर दिया है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नु इतने खुश हो गए, अमामा लेकर सफ़वान के पास गए। वो यमन भागने की तैयारी कर रहा था, सफ़वान इब्ने उमैया को कहा, तुझे यमन जाने की जरूरत नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे माफ कर दिया है। सफ़वान कहता है, I can't believe, नहीं हो सकता है। कहा, देख मैं हुजूर का अमामा लेकर आया हूं, ये साइन हुजूर ने भेजी है कि हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। सफ़वान को बिलीव नहीं हो रहा है, वो फौरन दौड़ता हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना तुमने मुझे माफ कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ सफ़वान, मैंने तुझे माफ कर दिया। सफ़वान कहता है, लेकिन मैं तो इस्लाम नहीं कबूल करने वाला हूं, मैंने इरादा नहीं किया इस्लाम कबूल करने का, मुझे 2 मंथ्स का टाइम चाहिए। हुजूर ने फरमाया, सफ़वान 2 मंथ्स किया, 4 मंथ्स तुझे देता हूँ, उससे भी ज्यादा देता हूँ, जब दिल में आए तब ईमान कबूल कर लेना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामला किया। चुनांचे रिवायत में है, अभी तो 4 महीने नहीं गुजरे थे, सफ़वान आए और उन्होंने आकर ईमान कबूल कर लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु वसल्लम अपने तो अपने, आपने दुश्मनों को माफ कर दिया है। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा मक्का से मदीना हिजरत कर रही है। मुशरिकीन को पता चला कि नबी की बेटी मक्का से मदीना जा रही है, तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ही का एक कजिन ब्रदर हुबार बिन अल अस्वद, उसको ये पता चला, उसे गुस्सा आया कि ये कैसे नबी की बेटी मदीना चली जाए। चुनांचे वो गया और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जिस ऊंट के ऊपर सवार थी, उसने ऊंट के पैर पर तलवार मारी है, ऊंट का पैर कटा है, वो ऊंट का बैलेंस गया और हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा जो ऊंट के ऊपर सवार थी, नीचे पथरीली जमीन थी, ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरी है। और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाहु ताला अन्हा प्रेग्नेंट थी, हमल की हालत में थी, ऊंट पर से नीचे पथरीली जमीन पर गिरी है, इतनी जोर से मार लगी है, वहीं पर मिसकैरेज हो गया, वहीं पर हमल गिर गया। इतनी तकलीफ हुई हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को। उसके बाद उन्होंने इसी हालत में, जख्मी है, मिसकैरेज हो चुका है, 15 दिन तक सफर किया है, क्योंकि वहां से मदीना पहुंचने में 15 दिन का फासला था। 15 दिन के बाद बिल्कुल निढाल होकर हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा मदीना पहुंची है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब को देखा, जिनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अल्लाह, ज़ैनब ने तेरे रास्ते में बहुत तकलीफ उठाई है। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा को ये जो मार लगी थी, जो मिसकैरेज हुआ था, उससे वो अच्छी नहीं हो सकी और उसी हालत में उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब को जिसने इंजर्ड किया, जिसने ऊंट पर से गिराया, जिसके बिना पर वो बिचारी का इंतकाल हो गया, उस वही शख्स فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنے ہیں تو یہ جدہ کی طرف بھاگ رہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں ورنہ محمد نہیں چھوڑیں گے, یہ جدہ کی طرف نکل گیا تھا. پھر اس کو خیال آیا کہ محمد تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, چلو میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. یہ حبار بن الاسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہے میں نے رونگ کیا ہے, میں نے آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہے, میں نے آپ کی بیٹی کو زخمی کیا ہے, آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, لیکن مجھے احساس سے میں نے رونگ کیا ہے, میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبار جاؤ, تم نے سچے دل سے معافی مانگی ہے, ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر ہم اپنی روح کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا ٹو رن اے بگ شو وی شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ, کہ ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, آج ہم نیت کر لے ارادہ کر لے ہمیں نہیں معلوم ہے یہ مجلس آئندہ ہمیں نصیب ہوگی نہیں ہوگی, آئندہ یہ گڑی آئے گی نہیں آئے گی, ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے, اپنے پروردگار کو راضی کرے اور لوگوں کو بھی معاف کر دے. آدمی کسی کو معاف کرنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس کا خیال کرنا ہے, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے. آج دیکھو آئے دن ہم سنتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں, اتنی معمولی بات ہوتی ہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہو گئی اور بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سیپریشن کی باتیں, ڈیورس کی باتیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں, یعنی جب ہم سنتے ہیں تو ہم شوک ہو جاتے ہیں کہ یہ بات تو آسانی سے سالو ہو سکتی تھی, یہ بات تو ذرا سی انڈرسٹینڈنگ کی تھی. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں, ہمیں یہ ڈر نہیں لگتا ہے اس روح کے بارے میں ہمیں سوال کیا جائے گا. آج دیکھیے معاملہ یہ ہو گیا ہے, ذرا سا ہسبینڈ اپنی وائف کے اوپر غصے ہو گیا اور ناراض ہو گیا یا کسی بنا پر ڈانٹ دیا, بیوی کا آنسر کیا ہوتا ہے 25 سال گھر میں ہو گئے آج تک یہ گھر میں میں نے سکھ ہی نہیں دیکھا ہے, سوائے دکھ کے مجھے کچھ نہیں ملا ہے, میری پوری زندگی دکھ کے اندر چلی گئی ہے, حالانکہ آئی تھی تب 40 کلو کی تھی آج 80 kg وزن ہو چکا ہے, لیکن زبان پر یہ کہ مجھے گھر میں سکھ ہی نہیں ملا ہے اور بس اسی بات پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے بہت اچھا کہا, وہ کہتا ہے کہ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی نا تو نکاح ہوئے تھے, تو نکاح کے بعد میں جب بھی میں اپنی وائف کو فون کرتا یا تو میں اسے کہتا تھا مائی بیبی ڈال, میں اس کو بیبی ڈال ہی بلاتا تھا. اس کے بعد میں وہ دن بھی آیا کہ ہماری شادی ہو گئی اور نئی نئی شادی ہوئی, میری بیوی جب سامنے آتی میں کہتا شی از مائی بابی ڈال, کہ یہ تو میری بابی ڈال ہے. اور کہتا ہے اب شادی کو 15-20 سال ہو چکے ہیں, اب وہ میرے لیے پینے ڈال ہے, یعنی اس کو دیکھتے ہی مجھے پینیڈول اور پیراسیٹامول کی ضرورت پڑتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہماری باتیں بڑھ جاتی ہے. یہی معاملہ ہسبنڈز کا بھی ہے کہ ذرا سا کوئی معاملہ ہوا, بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی یا بیوی ناراض ہو گئی یا بیوی نے کچھ کہہ دیا تو اتنا غصہ آ جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرنے لگتا ہے کہ میں نے رونگ عورت سے شادی کی ہے, تو میرے لیے کمپیٹیبل ہی نہیں ہے, مجھے تو کسی اور سے شادی کرنا چاہیے تھا اور میں نے بالکل رونگ سلیکشن کیا ہے. حالانکہ شادی کو 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, گھر میں 4-4, 5-5 بچے گھوم رہے اور اب اس کو عقل آ رہی ہے کہ میں نے رونگ جگہ پر شادی کی ہے, اتنی اپنی بیوی کی برائی کرنے لگتا ہے. یہ شریعت ہمیں نہیں سکھاتی ہے, ہمارے مذہب نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم اسے اتنے بڑے بڑے ایشوز بنا دے और इतने प्रॉब्लम्स हमारे अंदर क्रिएट होने लगे। वो कोई बूढ़े मियां थे, किसी बात पर बीवी से झगड़ा हुआ तो मौलाना साहब को मिले कि मौली साहब हमें मारे बीजी शादी करवी छे, कोई रिश्तो है तो जोजो, कोई रिश्तो है तो जोजो, मुझे दूसरी शादी करनी है, कोई रिश्ता हो तो देखना, कोई रिश्ता हो तो बताना। तो मौलाना ने कहा चचा जान, इस उम्र में रिश्ते नहीं आते हैं, फरिश्ते आते हैं। यानी ये तो फरिश्ते के आने का टाइम हो गया है, अब कहां रिश्ते रिश्ते की बातें कर रहे हो। तो जिंदगी इस तरह गुजरा करती है। मैं एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाऊं। एक सहाबी थे, उनकी बीवी बड़ी सख्त मिजाज थी और बहुत बोलती थी, और इतनी तेज मिजाज थी कि जब बोलने पर आती तो ऐसी रनिंग कमेंट्री शुरू होती कि वो बंद होने का नाम नहीं लेती। ये परेशान हो चुके थे कि ये बीवी कितना बोलती और कितना मुझे टॉर्चर करती है। दिल में ख्याल आया, मैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु को जाकर शिकायत करूं, क्योंकि हम जानते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु बड़े जलाली साहबी थे, और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु का बहुत रौब और दबदबा था। का उनको कंप्लेन करता हूं, वो आकर दो बात मेरी बीवी को करेंगे ना, फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और फिर ये मेरी सारी मेरे साथ इस तरह झगड़ा नहीं करेगी, जबान नहीं चलाएगी। ये उन्होंने इरादा किया और वो साहबी चले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु के घर पर। उस साहब अभी का बयान है, मैं हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु के दरवाजे पर गया, अभी तो दरवाजा नॉक करने वाला था तो अंदर से आवाज आ रही है, उनकी बीवी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु की बीवी उन पर नाराज थी और वो इनको डांट रही थी, और ऐसा डांट रही थी, ऐसा डांट रही थी। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु सुने जा रहे हैं। ये सहाबी सोचने लगे कि जिस डॉक्टर के पास गया था वही बीमार नजर आता है, कि मैं तो शिकायत करने गया था तो ये तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु की बीवी तो मेरी बीवी से भी ज्यादा लाउड है और वो तो इससे भी ज्यादा बोल रही है। इन्होंने वापस जाने का इरादा किया। इत्तेफाक से उसी वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु ने अपने घर का दरवाजा खोला, इनको देखा तो कहा आइए आइए। तो कहा मैं आने के लिए नहीं आया हूं, मैं वापस जा रहा हूं। कहा क्या बात है? तो कहा मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा बोलती है और बहुत सामना करती है और मुझे बहुत डांटती है, तो मैंने ये सोचा कि आप जरा उसको धमकाएंगे तो इसलिए मैं आपके यहाँ पर आया। आपके यहाँ तो मेरे से भी टेरिबल मामला है, और मतलब ये कि कौवे तो हर जगह काले हैं, तो आपके यहाँ तो ये मामला है। तो उस वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु ने जो बात कही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। हजरत उमर रदी वाकियतन वो हजरते उमर थे। उन्होंने उस साहबी को बुलाया, अपने पास बिठाया, और बिठाने के बाद कहा कि देख मेरे भाई, ये मेरी बीवी जो है ना, मेरे घर में मेरे कपड़े धोती है, तो ये मेरी धोबन है कि मेरे कपड़े धोने का काम करती है, ये मेरे पूरे घर में झाड़ू करती है तो ये नौकरानी का भी काम करती है, ये रोजाना मेरे लिए टाइम पर खाना बनाती है तो ये मेरे लिए बावर्ची का भी काम करती है, ये मेरी औलाद को पालती है और उनकी निगहबानी करती है, गोया मेरी खिदमत भी करती है, और रात को मैं तो सो जाता हूं, कितनी बार औलाद सताती है, ये मेरी बीवी रात भर जाग कर मेरी औलाद का ख्याल करती है। तो जो औरत मेरे लिए इतनी कुर्बानियां देती हो और इतनी सैक्रिफाइसेस देती हो, अगर उसने दो बोल जोर से बोल दिए तो क्या मैं सुन भी नहीं सकता हूं? वो साहबी तो हैरान रह गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अनु ने समझाया, ऐसे घर नहीं चला करते हैं, अरे उसकी पॉजिटिव्स को भी तो देख ले कि कितने सारे काम वो तेरे कर रही है, पूरे घर की सफाई करना, हुवर करना, किचन का ख्याल करना, खाना बनाना, आयन करना, कपड़े धोना, बच्चों का ख्याल करना, बच्चों की निगरानी करना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, वापस लेकर आना, कितनी सारी पॉजिटिव्स मौजूद है। और हमारे میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر کے اندر کام کرتی ہے اور کام کیا کرتی ہے کہ چیزیں ادھر ادھر پڑی ہے اسے اچھی طریقے سے ترتیب سے رکھ دیتی ہے اور اپنی جگہ پر رکھ دیتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف گھر میں گھر کو ٹائیڈی کرتی ہے اور ایک ایک چیز کو اچھی طریقے سے رکھتی ہے, اللہ اس عمل پر اسے ایک نیکی دیتا ہے, ایک گناہ معاف کرتا ہے اور جنت کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے. ایک ایک کام پر اللہ تعالیٰ یہ انعام دیتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ایک اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے اور رات کو جب بچے سوتے نہیں ہیں پوری رات جاگ کر نکالتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجاہد جو اسلامک کنٹری کی بارڈر پر پوری رات جاگ کر نکالتا ہے جو ثواب اسے ملتا ہے اللہ اس عورت کو بھی وہ ثواب نصیب فرماتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو اگر وہ دو بول بول بھی لیتی ہے تو اس کے اندر اتنا ناراض ہونے کی اور شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے زندگی کے طریقے. وہ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے میں سناؤں. ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور جا کر ڈاکٹر کو کہنے لگی My husband has the habit of talking in sleep. بس رات کو بولتا ہی رہتا ہے, اتنا بولتا ہے. اور وہ اتنی پریشان تھی, وہ کہنے لگی ڈاکٹر Just tell me now what's the solution. Will you prescribe him some medicine to get rid of this habit? Or can I buy anything over the counter? Yani itna bolne lagi ke please doctor help me now. I am really fed up of these sleepless nights. This habit of his is getting on my nerves. Please kuch karo aur mere husband ke liye koi dawai do. Ya to aap prescription likh kar do ya main over the counter buy kar lo. Aur wo bolte ja rahi ke ye raat ko bolta hai, main raaton ko so nahi sakti hu. I am fed up of sleepless nights. Doctor to sun kar hairan ho gaya, kehne laga okay, the only solution I can think about is give him an opportunity to speak while he is awake. ڈاکٹر نے جب سنا کہ یہ تھوڑی دیر میں اتنی کومنٹری مجھے دے چکی ہے اس کی بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہوگی, تو بہرحال ڈاکٹر نے کہا کہ وہ رات کو بولنا بند کر دے گا, دن میں تو اس کو بولنے دے. اللہ تبارک و تعالی تمام میاں بیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرمائے, ہمارے گھرانوں میں آپس کے اندر محبت نصیب فرمائے, ہمیں انڈرسٹینڈنگ نصیب فرمائے. یہ رمضان المبارک کا ہمارا آخری اس سال کا لیڈی اسپیشل پروگرام ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کی بھی حفاظت فرمائے, ہمارے بدن کی بھی حفاظت فرمائے اور ہم اس کے لیے اسباب اختیار کریں, ایسے کام نہ کریں کہ جس کی بنا پر ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم اپنی روح کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو چار کام کر لو تو تم غلطیاں نہیں کرو گے. پہلا کام حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو, دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو, بیانوں میں جایا کرو, تعلیم میں جایا کرو, دین کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرو. اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے کا جذبہ دے گا اور گناہ کرنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. تو پہلا کام یہ کر لو. اور پھر آگے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم تمہاری کوئی فرینڈ ہو, تمہاری کوئی سہیلی ہو جس سے تمہاری بہت دوستی ہو, تو اس کو تم یہ کہہ دو کہ دیکھ آج کے بعد میں کوئی گناہ کا کام کروں تو تم مجھے بتا دینا کہ یہ رونگ کر رہی ہے, تو کوئی رونگ کام کرے گی تو میں تجھے بتا دوں گی. تو اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کو نہیں انل منکر کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو تمہارے اپوزیشنز میں لوگ ہیں, جو تمہارے دشمن ہیں, جو تم پر حسد کرتے ہیں, وہ تمہاری جو برائی کرتے اس کو تم اچھا کر لو. इसलिए कि दुश्मन हमेशा हमारी नेगेटिव पॉइंट्स देखेगा, तो वो उसकी नजर में हमारी सारी बुराई होगी। वो जो जो बुराई तुम्हारी बयान करे, तुम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दो और अच्छा करना शुरू कर दो, उन बुराइयों को दूर कर दो। तो ये तीसरा तरीका है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, चौथा तरीका ये है कि अगर ऐसा कोई मामला हो तो एक काम करो, रोजाना रात को थोड़ी देर के लिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, रूम्स की लाइट बंद कर दो, तन्हाई में बैठ जाओ और सोचो कि आज का दिन मेरा कैसे गुजरा, मैंने कितनी अल्लाह की नाफरमानी की, मैं कैसी जिंदगी गुजार रही हूं, मैं कैसे लाइफ अपनी पास कर रहा हूं। हम इस तरीके से सोचे, थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें और अपने बारे में सोचे कि मैं क्या कर रही हूं, मैंने आज कितने अच्छे काम किए, कितने रॉन्ग काम किए। फिर सोचे, वो दिन भी आएगा मुझे अल्लाह के पास जाना है, वो दिन भी आएगा मेरा जनाजा उठेगा, वो दिन भी आएगा मुझे अल्लाह को जवाब देना है। आज जरा सी ठंडी लगती है, मैं घर में हीटर ऑन कर देती हूं, कल कब्र में मैं हीटर कहां से लाऊंगी। ये सब बातों को सोचे तो देखो इंशाल्लाह दिल तैयार हो जाएगा, रूह तैयार हो जाएगी नेक काम करने के लिए। और फिर अल्लाह वो खुशखबरी देगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बिकी राधियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो अपने आप से हम बात करें और सोचे कि मैंने आज क्या राइट किया, क्या रॉन्ग किया, और ये सोचे कि ये दीन कितनी कुर्बानियों के बाद मेरे पास आया है। अल्लाह के नबी ने कुर्बानी दी, अजवाज मुताहरात ने कुर्बानी दी, बनाते ताहिरात ने कुर्बानी दी, तब जाकर ये दीन हमारे पास आया है। एक आखिरी बात बयान करो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और करीब में ही हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का घर है, सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही थी। इतने में हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर से दोनों बच्चे हजरत हसन और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार हो गए, इतने बेचैन हो गए, अगेन एंड अगेन हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ देखने लगे। सहाबा से बातें कर रहे हैं लेकिन आपकी पूरी तवज्जो वहां पर है, यहां तक के हुजूर से बर्दाश्त नहीं हुआ, आप खड़े हो गए और सीधे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर पहुंचे, दरवाजा नॉक किया और बाहर से कहा, फातिमा, कोई जवाब नहीं मिला, फातिमा, कोई जवाब नहीं मिला। थर्ड टाइम का फातिमा, तो अंदर से हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बिल्कुल धीमी आवाज आई, अब्बा जान अंदर आ जाइए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। हजरत अली घर में मौजूद नहीं है, वो किसी दीनी काम में गए हुए हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिस्तर पर है, जैसे अब्बा जान को देखा है, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, अब्बा जान, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये थी, जब आप डोर पर आए थे आपको रिसीव करती, मैं आपके पास आती, लेकिन अब्बा जान अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, मेरे अंदर उठने की ताकत नहीं है, भूख की वजह से, फाके की वजह से, आज कई रोज से हमने खाना नहीं खाया है, हम सब भूखे हैं और इतनी मैं कमजोर हो गई हूं, मेरे अंदर उठने की बिस्तर पर से ताकत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का चेहरा उतरा हुआ है, आंखें बिल्कुल छोटी छोटी हो गई है, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुझे तो मालूम है मैं इन बच्चों से कितना प्यार करता हूं, मैं तो सहाबा के साथ बैठा हुआ था, इनके रोने की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं घर पर आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, छोटे बच्चे हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु को उठाया और फरमाया फातिमा इन्हें तू क्यों रोने देती है। हजरत फातिमा ने फरमाया रदी अल्लाह ताला ना अब्बा जान मैं नहीं रुलाती हो, इनकी भूख इन्हें रुलाती है, इन बच्चों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा हुसैन तो छोटा है, तू उसे दूध पिला देती, अपना दूध पिला देती, बच्चा खामोश हो जाता। ये सुनना था हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला ना की चीख निकल गए और फरमाया अब्बा जान अल्लाह की कसम खाती हो फाकों की वजह से मेरे पास दूध भी नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मेरे बच्चों को दूध पिलाओ, मेरा दूध भी खुश्क हो गया है। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को उठाया और अपनी जबाने मुबारक को हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु के मुंह में डाल दिया। नाना जान की जबान को हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु चूसने लगे, चूसते चूसते सो गए। जब हजरत हुसैन सो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अनु को उठाया, वो रो रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शोल्डर पर रखा, उन्हें थपथपाने लगे, टैप करने लगे, हाथ फिराने लगे, धीरे धीरे वो भी सो गए। जब दोनों बच्चे सो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के पास आए और आकर फरमाया ए बेटी फातिमा इस बिरिया फातिमा इस बिरिया फातिमा, बेटी फातिमा सबर कर, बेटी फातिमा सबर कर। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया और हाथ उठाकर ये दुआ की ए अल्लाह अगर आज तेरा ये इम्तिहान है तो तेरा नबी इस इम्तिहान पर राजी है। अल्लाह अगर आज तेरा ये इम्तिहान है, तेरा नबी इस इम्तिहान पर राजी है। ए अल्लाह मैं अपने घर वालों को तड़पता हुआ देख सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को तड़पता हुआ देख सकता हूँ, लेकिन ए मेरे मौला मैं मेरी उम्मत को जहन्नम में जाता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ए अल्लाह मैं सबर कर लूंगा, मेरे घर वाले सबर कर लेंगे, मैं इनकी तकलीफों को देखता रहूंगा, सबर करता रहूंगा, लेकिन अल्लाह इस सबर के बदले में तू मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, अल्लाह तू मेरी उम्मत को जहन्नम में मत डालना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह हर तकलीफ बर्दाश्त है लेकिन मेरी उम्मत को जहन्नम में मत डालना। इतना प्यार किया उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे। मेरी माए बहने आज इरादा करो, आज इरादा करो, मैं भी करूं आप भी करें हम सब करें कि आज के बाद हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, अपनी जान की भी हिफाजत करेंगे, जिस्म की भी हिफाजत करेंगे, रूह की भी हिफाजत करेंगे और अपने रब को खुश कर देंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए, मेरे बोलने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और आखिर में हर हफ्ते की तरह आज भी आपको एक बड़ा प्यारा छोटा सा वजीफा बतला देता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह अपनी बात को खत्म करता हूं। आज का जो वजीफा है मेरे पास, ये वजीफा है खास करके हमारे उन जवान बच्चों और बच्चियों के लिए जो शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं। कितने ऐसे माँ बाप हैं, इनके बच्चे जवान हो चुके, लड़के जवान हैं, लड़कियां ढूंढ रहे हैं। कितने माँ बाप हैं, लड़कियां बेटियां जवान हो चुकी है, वो बेटे ढूंढ रहे हैं। और देखो अल्लाह ने सबके रिश्ते बना दिए, हमें राइट सिलेक्शन करना है कि सही रिश्ता जो तकदीर में लिखा है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा वजीफा है कि वजीफा फॉर अ डिजायर्ड मैट्रिमोनियल मैच। और ये वजीफा मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। ये छोटा सा एक वजीफा है, इसको ईशा की नमाज के बाद पढ़े और इफ पॉसिबल तहज्जुद के वक्त पढ़े, दो टाइम में पढ़ने के लिए, या ईशा की नमाज के फौरन बाद पढ़ ले और अगर हिम्मत है तो तहज्जुद के वक्त उठ जाए और उस वक्त ये वजीफा पढ़ना है। और इस वजीफे को 91 डेज तक पढ़ना है। कंटिन्यूसली 91 डेज तक ये वजीफा पढ़ना है और शरी उज्र की हालत में भी पढ़ा जा सकता है। तो 91 डेज तक ये वजीफा पढ़ना है और डेली पढ़ना है 1111 टाइम्स। तो 1111 टाइम्स 91 डेज के लिए ईशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक्त में पढ़ सकते हैं। और बेटर तो यह है कि कंटिन्यूसली पढ़े, और अगर नहीं तो गैप करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 91 डेज तक ये वजीफा पढ़ ले इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला बेहतरीन जोड़ा हमारी बेटियों के लिए हमारे बेटों के लिए नसीब फरमाएंगे। और ये वजीफा ये है जो अभी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, छोटा सा वजीफा है। वजीफा ये है, अल्हम्दुलिल्लाहि ذل العز والكبرياء وصلى الله على محمد خاتم الانبياء। बस इतना सा वजीफा है, अल्हम्दुलिल्लाहि ذل العز والكبرياء وصلى الله على محمد خاتم الانبياء। अल्हम्दुलिल्लाहि ذل العز والكبرياء وصلى الله على محمد خاتم الانبياء। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे बच्चे बच्चियों को मुनासिब बेहतरीन रिश्ते में असर फरमाए। और इससे पहले कि हम दुआ को शुरू करें, हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। मैं सबसे पहले तो हमारी तमाम माओं बहनों और बच्चियों का बहुत 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 शुक्रगुजार हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने में चारों हफ्तों में बहुत ही बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें बच्चियां यहां पर हाजिर हुई। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी इस मस्जिद से मोहब्बत को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला जिंदगी भर हमसे इसी तरीके से दीन का काम लेता रहे। आप का मैं तहे दिल से मशकूर हूं। उसके अलावा जितने भी वॉलंटियर्स हजरात यहां पर है, कितने ऐसी बहनें हैं जिन्होंने काफी खिदमतें की है, जितने भी वॉलंटियर्स हजरात है, उसके अलावा हमारी आपाएं माशाल्लाह पूरा वक्त खिदमत में लगी रही, हमारी आपा रिजवाना, आपा शाहीन, आपा मुनीरा, आपा अस्मा और आपा मारिया जो हमारे मदरसे की आपा है, उसके अलावा दूसरी भी कुछ बहनें थी जो माशाल्लाह कंटिन्यूसली मदद कर रही थी, हमारा फरीजा है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके आने का भी शुक्रिया, सबके यहां पर खिदमत का भी शुक्रिया, और जो तआवुन आपने किया हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए उसके लिए भी हम तहे दिल से मशकूर है। उसके अलावा जितने भी बयानात हुए डेली वो अपलोड हो जाते हैं हमारी दोनों वेबसाइट्स पर, इसी तरीके से जो वजीफे बयान किए जाते हैं माशाल्लाह उसे भी अपलोड कर दिया जाता है हमारी anisulislam.com और falahi.com पर। तो ये जो लोग बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं इनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूं। अल्लाह तबारक व ताला सबको अपना बेहतरीन बदला नसीब फरमाए, जिसने जो कुछ किया अल्लाह को राजी करने किया, अल्लाह हम सबको अपनी रजामंदी नसीब फरमाए। और आज हमारे यहां पर ये आखिरी वेडिंग ग्रुप वेडिंग कलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा इंडिया और बांग्लादेश के हमारी बच्चियों के लिए। और जैसे आपको पता है कि 250 पाउंड्स में एक शादी होती है और 25,000 पाउंड्स अब तक इसके जमा हो चुके हैं। मैं आपसे अगेन दरख्वास्त करूंगा कि बहुत ही नोबल कॉज है, किसी की बच्ची की हम शादी करवा देंगे, अल्लाह हमारे घरों में आबादियां दे देगा, इस बिना पर हम दिल खोलकर अपनी ज़कात सदका लिल्लाह से उन गरीब बच्चियों के लिए ताउन करें। उसके अलावा हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है जो ईद पैकेट का प्रोजेक्ट है, इसमें भी अपने फितरा ज़कात सदका लिल्लाह हर किस्म की रकम से आप दे सकती हो, बाहर वुडन बॉक्स पड़ा हुआ है। तो ये ईद पैकेट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 5 pounds में एक पैकेट बनता है और गरीबों तक पहुंचा दिया जाता है, और इंडिया बांग्लादेश और मलावी इन तीन कंट्रीज में इंशाल्लाह ये पैकेट्स तकसीम होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 5,000 पाउंड जमा हो चुके हैं, इसके अंदर भी दिल खोल कर तावन फरमाए। अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फरमाए, हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबके लिए कबूलियत के फैसले फरमाए। आइंदा जिंदगी का भरोसा नहीं है, पता नहीं हम में से कौन होगा कौन नहीं होगा, अगर जिंदगी रही अल्लाह ने वही ताकत दी, यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी रही मुलाकात बाकी। अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।